मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अब उपभोग परिभोग परिमाणा व्रत के अतिचार बतलाते हैं। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषबधु पक्वाहारा सहचित्तेन वर्तते इति सचित्तम चेतनवत द्रव्यम। यानी भोजन में भोगोपभोग परिमाण व्रति को कैसे दोष लगते हैं उसकी चर्चा है। बोले कि जो चेतना के साथ वर्तता है उसको सचित्त कहते हैं, यानी जीवित वस्तु को सचित्त कहते हैं। तदुपश्लिष्ट संबंध, तो उससे जो बिल्कुल मिश्रित हो जाए जीवित वस्तु से वो सचित्त संबंध कहलाता है। तद व्यतिकीर्ण सम्मिश्र, और सचित्त संबंध का अर्थ होता है उससे जिसका संबंध हुआ है, और सचित्त सम्मिश्र का अर्थ होता है उससे जो पूरी तरह मिश्रित कर दिया गया है। कथम पुनरस्य सचित्तादिषु प्रवृत्ति, फिर कोई शंकाकार ने प्रश्न किया है कि एक व्रती की सचित्त आदि को खाने में प्रवृत्ति कैसे हो सकती है। तो बोलते हैं कि प्रमाद सम्मोहाभ्याम, प्रमाद और सम्मोह के कारण द्रवो वृषो वा विषव, तरल वस्तु जो होती है वो जो द्रव वृष अर्थात इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले पदार्थ होते हैं भोजन में, उसको अभिषव आहार कहते हैं। तो भोगोपभोग परिमाण वृत्ति को ऐसा भोजन, ये अतिचार भी छोड़ना होता है जितने समय तक उसने परिमाण किया है तब तक। अभिषव, अभिषव का अर्थ गरिष्ठ आहार। गरिष्ठ मीन्स हैवी, हाई कैलोरी डाइट, राजसिक भोजन कह लो, इसमें घी मिठाइयाँ और स्वादिष्ट चीज़ें और भारी चीज़ें हों, इंद्रियों को भड़काने वाली जो चीज़ें, यानी जो स्वाद का सुख अधिक देने वाली हों। अथवा वृष्य का अर्थ उधर भी आया था वृष्येष्ट रस, यहां पर भी अभिषव का अर्थ वही कह रहे हैं, वृष्य उत्तेजक वस्तु जिससे इंद्रियों में एक्साइटमेंट उत्पन्न हो जाती है, ऐसी वस्तु। फिर असम्यक पक्व दुष्पक्व, और जो कच्चा है या अधकच्चा है या जला हुआ है उसको दुष्पक्व कहते हैं, वो भी भोगोपभोग परिमाण वृत्ति का को उसका सेवन नहीं करना है। एतैर आहारो विशिष्यते। अंत में जो आहार शब्द आया ना, ये सारे पांचों उसके विशेषण है। सचित्त आहार, फिर संबंध आहार, सम्मिश्र आहार, अभिशव आहार और दुष्पक्व आहार, ऐसा जोड़ना इसमें। भोगोपभोग परिमाण, उपभोग परिभोग यहां पर नाम दिए हुए। तो जब भोगोपभोग कहते हैं तो भोग एक बार सेवन करने की वस्तु और उपभोग बार बार सेवन करने की वस्तु होती है। और जब उपभोग परिभोग कहते हैं तो उपभोग एक बार सेवन करने की वस्तु हो जाती है और फिर परिभोग बार बार सेवन करने वाली वस्तु हो जाती है। बात एक ही है, दोनों शब्दों का प्रयोग तत्वार्थ सूत्र में ही आता है। भोगोपभोग शब्द कहां पर आया है तत्वार्थ सूत्र में, स्मरण करो। नहीं, यहां तो उपभोग परिभोग परिमाण लिखा था 12 व्रतों के अंतर्गत। रत्नाकर शावकाचार में उसको गुण व्रतों में लिया है, यहां शिक्षा व्रत में लिया। तत्वार्थ सूत्र में 2 बार भोगोपभोग शब्द आया और 1 बार उपभोग परिभोग शब्द आया, और फिर अतिचारों में और भी आया है। जैसे अभी अनर्थ दंड व्रत के अतिचार आए थे ना, उसमें क्या लिखा था, ये यहां पर भी उपभोग परिभोग शब्द था। यानी ये कह रहे हैं हम कि 7वें अध्याय में उपभोग परिभोग शब्द 2 बार आए। और भोगोपभोग शब्द 8वें अध्याय में और 2रे अध्याय में आए। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणी च, और वहां पर 8वें अध्याय में दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, ऐसा एक सूत्र है। जब अंतराय कर्म संबंधी लब्धियों का वर्णन करते हैं या फिर अंतराय कर्म के भेदों का वर्णन करते हैं आचार्य उमा स्वामी, तो वहां पर भोगोपभोग शब्द का प्रयोग करते हैं। और यहां पर जब आचार पद्धति से वहां कर्म का वर्णन है क्षय उपशम क्षय को लेकर के, और जब यहां आचार पद्धति की बात आती है तब फिर वो उपभोग परिभोग शब्द का वर्णन करते हैं। तो सचित्त आहार, कभी सचित्त आहार लेने में आ जाए तो उसको अतिचार माना है। इमली के पेड़ के जो पत्ते होते हैं थोड़े से खट्टे रहते हैं, और कभी ऐसी प्रमाद और सम्मोह में ऐसी स्थिति आ जाती है कि एकदम अचानक व्रति ये तोड़ करके मुंह में डाल दे तो सचित्त आहार का अतिचार हो जाएगा। अभ्यास होने के बाद तो नहीं डालेगा, पर एकदम शुरू शुरू में ऐसे ही हो जाता है। दीक्षा के बाद कभी कभी पिच्छी भूल जाते हैं, फिर दूसरे महाराज बोलते हैं कि वो देख पिच्छी पड़ी वहां पड़ी है, तो फिर वो और ही उठा करके ले आते हैं, क्योंकि पिच्छी का अभ्यास नहीं है ना पहले से, तो ऐसी स्थिति रहती है। तो ये अतिचार लगते हैं। तो सचित्त आहार यानी जीवित वनस्पतियों का सेवन, फिर संबंध आहार का मतलब उससे संपर्क में आई हुई किसी चीज का सेवन, जैसे वो हरित पिधान निधान आया था ना, ढाक देना या उसके ऊपर रख देना, ऐसी चीज का सेवन करने से संबंध आहार हो गया। सम्मिश्र आहार का अर्थ होता है एकदम फ्रेश कड़ी पत्ता या फिर धनिया पत्ती तोड़कर कोई लाया और फिर तुरंत उसने उसको सब्जी वगैरह में मिला दिया, ऐसा होता है ना, डाल देते हैं ऐसे ऊपर से, तो एकदम फ्रेश तोड़ा हुआ हो तो अभी उसमें आत्मा प्रदेश होंगे वनस्पति के, तो वो सम्मिश्र आहार कहलाता है। फिर अभिशव आहार जो है वो वृश्य आहार होता है, जिसका वहां पर भावनाओं में निषेध किया था, ब्रह्मचर्य की भावना में वृश्य और इष्ट रस का त्याग बताया था। वृश्य यानी कि जो इंद्रियों में मादकता लाता है, एक भारीपन लाता है, उत्तेजना लाता है उसका, और इष्ट यानी जो मन पसंद आहार होता है उसका। फिर दुष्पक्व आहार का अर्थ होता है थोड़ा कच्चा रह गया, थोड़ा पका है, अथवा ज्यादा जल गया है, वो दुष्पक्व आहार होता है। ये रोटियों में अक्सर होता है, रोटी बनाते हैं तो कुछ लोगों को रोटी ज्यादा ब्राउन पसंद नहीं होती है, तो उनको व्हाइट वाली चाहिए होती है, तो व्हाइट वाली कई बार अंदर से पकती नहीं ठीक से, तो वो दुष्पक्व आहार हो जाता है। और अभी सुना है कि कोई संघ ऐसा है कि जहाँ पर रोटी ठीक से नहीं पकी होती है तो फिर वो उस रोटी को ऐसे अलग कर देते हैं, वो देख लेते हैं, ऐसे चेक कर लेते हैं साधु, और देखते हैं कि ये ठीक से पकी हुई नहीं है, ज़्यादा जली हुई हो तो भी वो दुष्पक्व है, और अगर अधकच्ची हो तो भी वो दुष्पक्व है। खाखरा भी ऐसा होता है, खाखरा बनाते हैं फिर ऐसे तोड़ते हैं तो कभी कभी वो टूटता नहीं है, ऐसे 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 तोड़ना पड़ता है, तो वो दुष्पक्व आहार हो जाता है, तो वो भी अतिचार है और इससे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। ऐसा तत्वार्थ वार्तिक में लिखा, देखो हम प्रयास करते हैं ढूंढने का। बिल्कुल वही पेज खुला, ये केवल भोजन भोजन की बात नहीं कर रहे हैं, बोले कि इसका अनुलेपन या फिर ऐसी कोई वस्तु पहन लेने पर भी दोष लगता है, सचित्त के संसर्ग वाली वस्तु। चावल के दाने कच्चे हो या फिर जले हुए हो, वो सब दुष्पक्व आहार में आते हैं। चावल के उदाहरण ज़्यादा है शास्त्रों में, रोटी के कम है। तो फिर रोटी क्या ऐसा है क्या कि पहले चावल थे और फिर रोटियां बाद में आई, पता नहीं, खोज करनी होगी। इंद्रियों के मद की वृद्धि होती है इससे, और ये मिल गया उसका कि सचित्त के प्रयोग से वातादिक का प्रकोप होता है, और फिर वातादिक को ठीक करने जाओ तो फिर उसमें दवाइयां लेनी पड़ती है और उससे कर्म बंद होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भाई अतिथयश्चैनम परिहरेयुः इति, जो अतिथि है आहार के लिए आए हैं चौके में बाहर से, मतलब जो साधु हैं पड़गान में आए हैं, बोलते हैं कि उनको तो खास इनका त्याग करना होता है, और अगर वो गृहस्थ भोगोपभोग परिमाण व्रती जो आहार दे रहा है साधु को, वो अगर नहीं लेगा तो फिर ये चीज साधु को मिलेगी नहीं, आएगी नहीं उनकी अंजलि में। तो इस प्रकार ये उपभोग परिभोग परिमाण के पांच अतिचार थे, सचित्ताहार, संबंधाहार, सम्मिश्राहार, अभिशव आहार और दुष्पक्व आहार। अब आहार दान में कौन से अतिचार होते हैं वो बता दें। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। कमल के पत्ते या केले के पत्ते पर कोई भोजन सामग्री रखी है और वो पत्ता बिल्कुल ताज़ा है, फ्रेश है, सचेत है, तो साधु को अगर वो आप आहार में देते हैं वो वस्तु, तो आपको दोष लगता है। फिर दूसरा, साधु को भी लगता है, साधु के 46 दोषों में भी ये बात आती है। हाँ, सचेत हो तो, अन्यथा नहीं लगेगा, क्यों लगेगा। फिर आप विधान का अर्थ होता है ढांकना उससे, वही बात है। और पर व्यपदेश, व्यपदेश का अर्थ नाम होता है, और पर व्यपदेश का अर्थ होता है दूसरे किसी का नाम लेकर के देना, कि महाराज जी ये हमारे चाचा जी की तरफ से ले लो, ये हेमावती अम्मा की तरफ से ले लो। ऐसे मतलब आहार देते समय कोई चीज आप दे रहे हो लेकिन दूसरे का नाम लेकर के दोगे तो फिर उसमें भी दोष लगता है। क्या पता वो अभी शुद्धि के वस्त्र पहना हुआ है या फिर पता नहीं क्या कर रहा है, हो सकता है वही खाना खा रहा हो और उसके नाम से आप आहार दो तो फिर वो अच्छा नहीं ना। तो आप शुद्धि में नवोपचार विधि से आप आहार दे रहे हैं तो आप दीजिए आहार अपनी तरफ से, किसी का नाम लेकर के मत दीजिए। फिर मात्सर्य, मात्सर्य का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। एक दातार दूसरे दातार के प्रति ईर्ष्या कर लेता है, अभी हमने उस दिन बताया भी था, रत्नकरण में भी एकदम समानांतर चल रहा अपना विषय, तो वो भी एक अतिचार हो जाता है। फिर कालातिक्रम का अर्थ होता है समय का उल्लंघन करना, यानी साधुओं का जो भोजन का समय है उसके आगे पीछे भोजन देना उनको, तो समय का उल्लंघन है। और फिर इसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में विलंब नाम का भी एक दोष बताया है, वो काल से ही संबंधित है, कि आप साधु का पात्र या अंजलि खाली हो तो अधिक समय तक खाली नहीं रखते, उसमें जल्दी से जल्दी कोई चीज डाली जाती है, और वहां अगर देर लगाते हैं तो आपको अतिचार लगता है। एक माता जी थी, उनने बताया कि हम लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं श्वासोच्छ्वास से, और तब तक अगर अंजलि खाली रह जाती है तो फिर हम आहार छोड़ देते हैं उस दिन। थोड़ा विलंब तो हो सकता है, पर विलंब फिर कभी कभी प्रमाद हो सकता है, थोड़ा विलंब करते करते ज्यादा विलंब भी होने लग जाए तो वो भी एक अतिचार है। अनगाराणाम अयोग्य काले भोजनम कालातिक्रम इति कथ्यते। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि जो अनगार जन है उनके लिए अयोग्य समय में भोजन देना कालातिक्रम है। फिर कोई प्रश्न करता है कि क्या संलेखना धारण करते समय भी कोई ऐसे अतिचार लग सकते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि हाँ, वहां भी 5 अतिचार होते हैं, जीवित मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध निदानानी। जीवित, जीविताशंसा, जीवित रहने की आकांक्षा हो जाती है, संलेखना चल रही है, और फिर पूछते हैं वो क्षपक कभी कभी कि क्या तिथि हो गई आज, अष्टमी हो गई क्या, बोले नहीं अभी अष्टमी को थोड़ा समय बाकी है। ठीक है, फिर मान लो कोई त्योहार आ रहा है पास में, तो फिर उनकी इच्छा होती है कि हम त्योहार तक चल जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसी जीने की आकांक्षा जो हो जाती है वो भी एक अतिचार है, क्योंकि अब मरण आ ही गया है सामने तो तटस्थ हो जाना ही सर्वश्रेष्ठ है। अब अधिक जी जाऊं या जल्दी समाप्त हो जाऊं, तकलीफ होती तो ऐसा लगता है कि जल्दी समाप्त हो जाऊं, कब तक चलेगी संलेखना, बहुत दिन हो गए, तकलीफ तो कम हो ही नहीं रही, और फिर क्या करें। अब लोग संबोधन देते हैं, उनको होती है क्या तकलीफ संबोधन देने वालों को, वो तो बोल के चले जाते हैं, भोगना तो हमें पड़ता है। तो ये सब कभी विचार आते हैं ऐसे, और योग्य निर्यापक आचार्य और अच्छे वैयावृत्य करने वाले हों और सही संबोधन देने वाले, और उनको जिनके प्रति अधिक विश्वास हो, जिसके प्रति उनका रुझान हो, लगाव, उनके उपदेश सुनने का लगाव, तो उनके माध्यम से अगर वो सुनते हैं तो उनको ज्यादा अच्छा रहता है। तो जीवित आशंसा, मरण आशंसा, दोनों प्रकार की आशंसा होती है। आशंसा का अर्थ अभिलाषा, आकांक्षण अभिलाष आशंसेत्युच्यते। निश्चित रूप से छूटने वाला जो शरीर है उसके प्रति ऐसी भावना रखना, ऐसी कांक्षा रखना कि और कुछ दिन चल जाए, दिवाली तक चल जाए तो अच्छा रहेगा, एक दिवाली और देख लें, जाना तो है, कौन बच सकता है यहाँ दुनिया में, एक दिवाली और हो जाए, तो ये जो आकांक्षा है वो अतिचार है। फिर ज्यादा तकलीफ होने के कारण मरणम प्रति चित्तानुरोधो, मरण के प्रति मन का वो हो जाना, रोग, उपद्रव और आकुलता, इनसे संबंधित आकुलता को लेकर वर्तमान जीवन जल्दी पूरा हो जाए तो फिर मैं, यानी इस शरीर संबंधी जितनी पीड़ा है मेरी कम से कम शांत तो हो जाएगी, फिर देवगति में मैं ठीक है, अच्छे से रहूंगा, ऐसा सोचकर, ये भी एक अतिचार है। फिर पूर्वकृत सहपांशु क्रीड़नाद्यनुस्मरणान मित्रानुराग। फिर अब मरण सामने आता है तो पूरे जीवन की याद आती है, मृत्यु सामने है तो जीवन भर में जो जो हुआ था सब याद आते। फिर ऐसा भी याद आता है कि देखो वो सबसे अच्छे दिन तो मेरे बचपन के दिन थे, जब हम लोग मिट्टी में और रेत में खेला करते थे, और उस समय के मेरे साथी इस समय कहाँ हैं, एक बार बस मिल लेते तो फिर मैं चैन से चला जाता। ऐसी जो आकांक्षाएं होती हैं वो भी मित्रानुराग कहलाता है। अब तो क्या है कि धर्म से अनुराग रखो, बाकी सबसे न किसी पर राग रखना है, न किसी पर द्वेष रखना है, जाना ही है। फिर सुखानुबंध अनुभूत प्रीति विशेष स्मृति समन्वाहर सुखानुबंध। फिर अपने जीवन के जो सुख के दिन है वो भी याद आते हैं कि क्या वो दिन थे, और वो याद कर करके फिर अभी संलेखना के समय अंदर ही अंदर बार बार उसको याद करते हैं कि वो क्या दिन थे, और आज देखो कैसी हालत हो गई शरीर की। उस समय हम लोग घुड़सवारी करते थे, उस समय क्या मस्त मस्त चीजें खाते थे, उस समय क्या क्या करते थे, ये सब जो सुख थे उनके पुराने, उसका अभी तक संपर्क बनाए रखना, ये भी एक अतिचार है। तो उस प्रीति को छोड़ देना। और फिर अंतिम अतिचार ये है कि इतना कठिन मैंने त्याग और तप किया है तो अब इसके बाद मुझे कुछ अच्छी अच्छी सामग्रियां और सुख के साधन वगैरह मिल जाए, सुविधाएं मिल जाए, तो आकांक्षा हो जाती है। नियतम चित्तम दीयते तस्मेति निदानम। नियम से मन वहां दे देते हैं लोग आगामी सुखों के प्रति। मान लो किसी ने आज उपवास किया है तो फिर उसको लगता है कि कल का जो भोजन है वो रोज जैसा ना हो, कुछ थोड़ा अंतर तो हो, जो ये जो अभिलाषा है। ऐसे और भी अनेक अनेक प्रकार की अभिलाषाएं होती है, उसको निदान कहते हैं। दुनियादारी के सुख की आकांक्षा को निदान कहते हैं। इस तरह ये हाँ, ये गृहस्थ संबंधी बता रहे हैं, गृहस्थ धर्म के अंतर्गत ही अतिचार बता रहे हैं। अभी ये पूरा अणुव्रतो गारी से लेकर मात्र गृहस्थ धर्म का वर्णन है, यहां पर कहीं भी साधुओं का वर्णन नहीं है। इसके बाद दान का वर्णन आगामी सूत्र में आएगा, अभी इतना ही रखते हैं। अतिचारों का प्रकरण पूरा, पूरे 70 अतिचार थे, सम्यक दर्शन के 5, पांच व्रतों के पांच पांच, तो 30 हो गया। फिर सात शीलों के पांच पांच, 35 हो गया। तो 30 और 35 65 हो गया, और संलेखना के पांच, ऐसे 70 अतिचार हो गए। जैनम जयतु शासनम।